संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 19 जून 2020 के साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं, रोजगार, आजीविकाओं और परिवारों पर कोविड महामारी का व्यापक असर, हरित समावेशी और सुदृढ़ पुनर्बहाली की नींव तैयार करने की कार्य योजना, महासभा के नए अध्यक्ष के साथ साथ सुरक्षा परिषद के 5 व एकोसॉक के 18 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न, भारत भी 2 साल के लिए पहुंचा सुरक्षा परिषद में। दुनिया भर में बच्चों की लगभग आधी आबादी होती है शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा का शिकार, ठोस कदम उठाने की पुकार। कोविड अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। हमारा न्यूज लेटर सब्सक्राइब करके भी आप ताजा समाचार खुद ब खुद हासिल करते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया भर में रोजगारों, आजीविका के साधनों और कामगारों, उनके परिवारों और व्यवसायों के कल्याण पर असर लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को एक नया नीति पत्र जारी किया जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कोरोना वायरस संकट के भयावह दुष्परिणामों को दर्शाते हुए हरित, समावेशी और सुदृढ़ पुनर्बहाली की नींव तैयार करने की एक कार्य योजना पेश की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कामकाजी दुनिया और कोविड-19 पर तैयार रिपोर्ट बताती है कि निर्बल समूह इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विशेषतया अनौपचारिक क्षेत्र में कामगार, युवा, महिलाएं, विकलांगजन और प्रवासी व शरणार्थी। कोरोना वायरस संकट के कारण हर 5 में से एक युवा का रोजगार खत्म हो गया है। मई महीने के मध्य तक विश्व के 94% कामगार ऐसे देशों में रह रहे थे जहां कार्यस्थलों को बंद करना पड़ा है। तालाबंदी से प्रभावित एक ऐसी पीढ़ी, लॉकडाउन जनरेशन, तैयार होने की आशंका बढ़ गई है जिसके पास पहले की तुलना में कम हुनर और वेतन होगा, विषमताएं और व्यापक होंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश।
इट्स टाइम फॉर अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रीजनल नेशनल एफर्ट्स टू क्रिएट डिसेंट वर्क फॉर ऑल।
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि ये समय एक समन्वित वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयास का है ताकि हरित, समावेशी और सुदृढ़ पुनर्बहाली की नींव पर सभी के लिए अच्छे और उपयुक्त रोजगार का सृजन हो। ताजा नीति पत्र में 3 चरणों वाली जवाबी कार्रवाई का खाका पेश किया गया है और ऐसी पुनर्बहाली की पैरवी की गई है जिसमें सामाजिक संरक्षा, अवैतनिक देखभाल, श्रम अधिकार संरक्षण और नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश आने वाली चुनौतियों से भी निपटा जाए। कोविड-19 महामारी से पहले भी कामकाजी दुनिया पर टेक्नोलॉजी, जनसांख्यिकी बदलावों, जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण जैसे कई जोखिम मंडरा रहे थे। कोरोना वायरस संकट के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पुराने ढांचे पर खड़ा करना तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नई दिशा में आगे बढ़ते समय उसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष पद के साथ साथ सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव बीते सप्ताह संपन्न हो गया। तुर्की के वरिष्ठ राजदूत वोल्कान बोजकिर को नया महासभा अध्यक्ष चुना गया है जो महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सितंबर में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल शुरू करेंगे। इस पद के लिए बोजकिर एकमात्र उम्मीदवार थे। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के राजदूतों ने फेस मास्क और दस्ताने पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखकर मतदान किया। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए पर्याप्त मत हासिल करने के बाद भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केनिया का चयन हुआ है। सुरक्षा परिषद के नव निर्वाचित अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू होगा। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों के चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाले 18 सदस्य देशों को निर्वाचित घोषित किया गया है जो 3 वर्ष का अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू करेंगे। दुनिया में कुल बच्चों की आधी आबादी यानी लगभग 1 अरब बच्चे हर साल शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी रक्षा के लिए स्थापित रणनीतियां लागू करने में देश नाकाम रहते हैं। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 नामक ये रिपोर्ट अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जिसमें इंस्पायर फ्रेमवर्क के तहत 155 से ज़्यादा देशों में प्रगति का आकलन किया गया है। ये फ्रेमवर्क बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार की गई 7 रणनीतियों का पुलिंदा है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसिस ने कहा कि बच्चों का कल्याण और उनके स्वास्थ्य की रक्षा हमारे सामूहिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी हिंसा के लिए किसी भी कारण को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के मुद्दे पर यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गाम्बा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि बचपन दर्द, भय और क्रूरता का शिकार हो रहा है और दुनिया बस मूक दर्शक बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गाम्बा ने कहा है कि युद्धरत पक्ष युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके अपने ही बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। दुश्मनी के माहौल में हिंसा के दौरान बच्चों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता और इस वजह से उन्हें बेहद ज़रूरी मदद नहीं मिल पाती है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 भी बच्चों के लिए त्रासदीपूर्ण साल साबित हुआ और बच्चों के अधिकार हनन के 25,000 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज किए गए। गंभीर हनन के कुल मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और हर दिन हनन के लगभग 70 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में लगभग 4,400 ऐसे मामलों की पुष्टि की गई है जिनमें बच्चों तक मानवीय राहत नहीं पहुंचने दी गई। वर्जीनिया गाम्बा ने इसे वर्ष 2019 का सबसे चिंताजनक रुझान करार दिया है। साथ ही मानवीय राहत कर्मियों पर लगातार हमले और बच्चों तक बुनियादी मदद पहुंचाने के कार्य में उग्र ढंग से बाधाएं खड़ी किया जाना चुनौतीपूर्ण है। राहत कर्मियों द्वारा वितरित की जाने वाली राहत सामग्री को लूट लिया गया और उनकी आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गई। यमन, माली, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सीरिया, इसराइल और फलस्तीन में हालात को सबसे ज्यादा व्यथित करने वाला बताया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि स्कूल और अस्पताल परिसरों को निशाना बनाया जाना और बुनियादी अधिकारों का सम्मान न किया जाना बेहद चिंताजनक है, खास तौर पर अफगानिस्तान, इसराइल, फलस्तीन और सीरिया में जहां ऐसे लगभग 927 हमलों की पुष्टि हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के खिलाफ असरदार वैक्सीन मिलने की स्थिति में इस साल के अंत तक उसकी करोड़ों खुराकें तैयार की जा सकेंगी। यूएन एजेंसी की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कारगर वैक्सीन के व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए सभी देशों से पारस्परिक सहयोग का आह्वान किया है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए फिलहाल अनेक देशों में वैक्सीन के परीक्षण चल रहे हैं और इनमें से 3 तो मानव परीक्षण का अपना अंतिम चरण शुरू करने के करीब पहुंच गए हैं। COVID-19 पर एक अपडेट के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी योजना को आकार देने में जुटा है जिससे ये तय किया जा सकेगा कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिकता के तौर पर पहली खुराकें किन लोगों को दी जाएंगी। यूएन एजेंसी की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हम सदस्य देशों के साथ एक प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं ताकि न्याय संगत तरीके से ये तय किया जाए कि वैक्सीन की सीमित आपूर्ति को किस तरह साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये मानकर चला जाए कि वैक्सीन ट्रायल सफल साबित होंगे तो फिर इस साल के अंत तक एक या फिर उससे ज्यादा वैक्सीन की लगभग 20 करोड़ खुराकें उपलब्ध हो सकेंगी और अगले साल ये संख्या अरबों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब दुनिया एक साथ आए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा जा रहा है जिसके जरिए निर्णय किया जा सकता है कि वैक्सीन की प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए। जैसे अग्रिम मोर्चे पर डटे लोगों को, जिनमें ड्राइवर, एम्बुलेंस कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी, किराने की दुकान पर काम करने वाले और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इससे पहले इसी हफ्ते यूएन एजेंसी ने मेडिकल ट्रायल के उन शुरुआती नतीजों का स्वागत किया था जिनमें COVID-19 से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार में डेक्सामेथासोन नामक एक स्टेरॉयड से मदद मिली है। ट्रायल के मुताबिक वेंटिलेटर का सहारा लेने वाले मरीजों को ये दवाई दिए जाने से मृत्यु दर में 1/3 की कमी आई, जबकि उन संक्रमितों की मृत्यु दर 20% घटाने में सफलता हासिल हुई जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था।
जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए जॉर्ज फ्लॉयड के भाई फ्लोनेस फ्लॉयड ने समाज में गहरी जड़ जमाए नस्लवाद को उखाड़ फेंकने की पुकार लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ध्यान रहे कि अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 25 मई को काले अफ्रीकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर एक पुलिस अधिकारी ने कई मिनटों तक घुटना टिकाए रखा था और हालत बिगड़ने पर बाद में पुलिस हिरासत में ही जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में नस्लीय न्याय की मांग के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। मानवाधिकार परिषद के नाम पहले से रिकॉर्ड किए गए अपने संदेश में फ्लोनेस फ्लॉयड ने अमेरिका में काले लोगों की मौतों और विरोध कर रहे प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसा की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराई जाने की अपील की है। फ्लोनेस फ्लॉयड ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कथित पुलिस क्रूरता और उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का जिक्र किया जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुए बर्ताव और उनकी मौत का विरोध करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की नई रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2019 में जबरन विस्थापन का शिकार लोगों की संख्या बढ़कर 7,95,00,000 से भी ज़्यादा हो गई। युद्ध, हिंसा, यातना और आपात हालात के कारण पिछले एक दशक में ये संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर जारी इस रिपोर्ट में यूएन एजेंसी ने विस्थापितों की मदद के लिए सरकारों से पहले से कहीं ज्यादा प्रयास करने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने गुरुवार को अपनी वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2019 के अंत तक कुल 7,95,00,000 विस्थापितों में से 4,57,00,000 घरेलू विस्थापित हैं, यानी उन्हें अपने ही देश में विस्थापित होकर किसी अन्य हिस्से में शरण लेनी पड़ी है। इसके अलावा 42,00,000 लोग अपनी शरणार्थी आवेदन प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2,96,00,000 शरणार्थी जबरन अपने घर से विस्थापित हैं और अपने देश से बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में औसतन हर 97 लोगों में से एक व्यक्ति विस्थापित है। पिछले वर्ष 87,00,000 लोग विस्थापन का शिकार हुए और ये संकट विकासशील देशों में सबसे ज्यादा है। विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर भारत और मालदीव में शरणार्थियों के लिए UNHCR के हाई कमिश्नर ऑस्कर मुंडिया ने कहा,
वी नीड टू फ्रेम द चैलेंज पोज्ड बाय रेफ्यूजी अराइवल्स नॉट एज अ थ्रेट।
हमें शरणार्थियों के आने को अपने जीवन और पहचान के लिए खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे साझा कार्रवाई का अवसर मानना चाहिए।
भारत और मालदीव में शरणार्थियों के लिए UNHCR के हाई कमिश्नर ऑस्कर मुंडिया के शब्द। रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्थापन से सभी देश प्रभावित हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में जबरन विस्थापन का शिकार लोगों में 85% की मेजबानी निर्धन देश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन के लिए अनेक प्रकार की आपात परिस्थितियों को वजह बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुमानों के अनुसार जबरन विस्थापन के शिकार 7,95,00,000 लोगों में 3,00,00,000 से ज्यादा बच्चे हैं। भारत और मालदीव में शरणार्थियों के लिए UNHCR के हाई कमिश्नर ऑस्कर मुंडिया ने बताया कि एशिया प्रशांत में किन देशों में शरणार्थियों की संख्या ज्यादा है।
The number one country that is hosting refugees is Pakistan, followed by Iran, followed by Bangladesh. In the specific case of India,
एशिया प्रशांत के देशों में सबसे ज्यादा शरणार्थी पाकिस्तान में हैं, फिर ईरान और उसके बाद बांग्लादेश का स्थान है। भारत में लगभग 2,44,000 रेफ्यूजीज हैं, जिनमें से अधिकतर को सीधे तौर पर भारत सरकार से मदद मिल रही है।
भारत और मालदीव में शरणार्थियों के लिए UNHCR के हाई कमिश्नर ऑस्कर मुंडिया के शब्द। सामूहिक विस्थापन पर वैश्विक महामारी COVID-19 का असर पड़ने और हालात ज्यादा गंभीर होने की आशंका है। वैश्विक महामारी COVID-19 के शुरू होने के बाद से बांग्लादेश और म्यांमार से दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया और अन्य देशों का रुख करने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है।
21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष ये 6ठा योग दिवस है। योग दिवस से संबंधित कुछ मल्टीमीडिया सामग्री आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। पता है news.un.org/hi। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।